नमस्कार भारत, 12 नवंबर दिन सोमवार, मैं हूं वात्सल्य राय। बीबीसी के रिसर्च से मिली जानकारी, भारत में राष्ट्रवाद के नाम पर फैलाई जा रही हैं फर्जी खबरें, आज से नई पहल बियॉन्ड फेक न्यूज।
दिल्ली समेत 6 और जगहों पर हम लोग एक पूरे दिन भर का कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि ये बताएगा इस फेक न्यूज के पीछे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है।
लखनऊ में रिसर्च साझा करेगी बीबीसी हिंदी की टीम।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो भी आएंगे।
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान लेंगे ग्राउंड जीरो से अपडेट।
सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है और इस बार तो और ज्यादा फोर्स आई है।
वोट डालने जाएंगे ना काम करके।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। बीबीसी आज बियॉन्ड फेक न्यूज नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। इसकी शुरुआत एक रिसर्च के नतीजों को जारी करने से होगी। ये मौलिक रिसर्च इस बात पर की गई है कि लोग क्यों और कैसे गलत खबरें शेयर करते हैं। इस अभियान के तहत भारत और कीनिया में पैनल डिबेट्स की सीरीज के अलावा हैकेथॉन भी आयोजित किए जाएंगे। भारत में दिल्ली और लखनऊ समेत 7 शहरों में ये कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन हो गया है। देर रात करीब 2 बजे बेंगलुरु में उनका निधन हुआ। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद भंग करने के अपने विवादास्पद फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि अगर संसद भंग नहीं की गई होती तो प्रतिद्वंदी सांसदों के बीच का संघर्ष अशांति का कारण बन सकता था। बीते शुक्रवार को सिरिसेना ने संसद भंग करने का आदेश जारी किया था। सिरिसेना के फैसले का देश में काफी विरोध हो रहा है। श्रीलंका में कई जगहों पर इस आदेश के बाद से प्रदर्शन हुए। देश की राजधानी कोलंबो में हुए एक ऐसे ही प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली कोलंबो की मेयर रोजी सेनानाय ने कहा, कोलंबो में लोगों ने तय किया है कि वो लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। राष्ट्रपति के इस फैसले से वाकई देश में उथल पुथल मची हुई है। अब वो समय आ गया है जब हम नागरिकों को लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए आगे आना पड़ेगा। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के 100 बरस पूरे होने के मौके पर जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने राष्ट्रवाद के उफनते ज्वार के खतरों से आगाह किया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि अंध राष्ट्रवाद से प्रेरित विचार दोबारा जड़ें जमा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि पुराने दानव दोबारा सतह पर लौट रहे हैं। इंटरनेशनल पीस फोरम में एंगेला मर्केल ने कहा कि शांति एक बड़ा मुद्दा है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एंगेला मर्केल ने कहा,
den Frieden, den wir heute haben, den wir zum Teil schon als
शांति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हमें इसे बनाए रखने के लिए सतत काम करते रहने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगा कि आज वो वक्त है जब मैं शांति को लेकर अपनी चिंता आप सभी के सामने रख सकती हूँ। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गजा में इसराइली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच संघर्ष की खबर है। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस संघर्ष में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें से एक हमास का कमांडर बताया जा रहा है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि संघर्ष के दौरान इसराइली जेट विमानों ने मिसाइलें भी बरसाई। कैलिफोर्निया के जंगलों में भड़की आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। आग की चपेट में आने से अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। मौसम भी प्रतिकूल ही है। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख डेरिल ऑस्बी ने कहा कि हम आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके प्रबंधन को दोषी बताया है। हालांकि फायर फाइटर यूनियन ने ट्रंप के ट्वीट को जानकारी के अभाव में दिया गया गलत बयान बताया है। आग की वजह से यहाँ हालात काफी खराब हैं। कोनी नाम की एक महिला ने बताया,
We're basically homeless right now, you know, and
फिलहाल तो हम बेघर हैं और ये बहुत ही बुरी स्थिति है। इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था। हम बहुत मुश्किल से बाहर निकल सके। हमें लग रहा था कि जैसे हम बचेंगे ही नहीं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। खबरें आपके संसार का अहम हिस्सा है, लेकिन बदलते दौर में खासकर इंटरनेट क्रांति के बाद से खबर हासिल करने के माध्यम बढ़ गए हैं। परंपरागत मीडिया यानी चैनल और अखबारों के साथ साथ बड़े पैमाने पर खबरें सोशल मीडिया में भी साझा की जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कितनी खबरें सच होती हैं और कितनी फेक न्यूज़? बीबीसी ने इसे लेकर व्यापक रिसर्च किया है और इस रिसर्च में ऐसी कई जानकारियां सामने आई हैं जो हैरान कर सकती हैं। ये रिसर्च बताती है कि भारत में राष्ट्रवाद के नाम पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। इस रिसर्च पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो साथी पवन सिंह अतुल और भूमिका राय। पवन, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रिसर्च से क्या जानकारी आई है।
वात्सल्य, बीबीसी ने बियॉन्ड फेक न्यूज प्रोजेक्ट के तहत भारत, केन्या, नाइजीरिया में व्यापक स्तर पर रिसर्च की है। इस रिसर्च से पता चला है कि लोग राष्ट्र निर्माण की भावना से राष्ट्रवादी संदेशों वाले फेक न्यूज को साझा कर रहे हैं और राष्ट्रीय पहचान का असर खबरों से जुड़े तथ्यों की जाँच की जरूरत पर हावी हो रहा है
जी।
यह रिपोर्ट विस्तार से यह भी बता रही है कि कैसे इनक्रिप्टेड चैट ऐप्स जो हैं उनके जरिए फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है।
यानी जो व्हाट्सएप है, जिस तरह से लोग
व्हाट्सएप है, हाइक है, ऐसे तरह। इस रिपोर्ट में ट्विटर में मौजूद कई नेटवर्कों का अध्ययन किया गया और इसका विश्लेषण किया गया कि लोग इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स से लोग किस तरह से ये संदेश जो आगे बढ़ाते हैं और फैल जाते हैं ये संदेश। बीबीसी के लिए ये विश्लेषण करना तभी संभव हुआ जब यूजर्स ने अपने मोबाइल फ़ोन का एक्सेस हमें दिया। रिपोर्ट की मुख्य बातों की चर्चा करें तो भारत में लोग उस तरह के संदेशों को शेयर करने में झिझक महसूस करते हैं जिनसे हिंसा हो सकती हो, लेकिन यही लोग राष्ट्रवादी संदेशों को शेयर करना अपना फ़र्ज़ मानते हैं। भारत की तरक्की, हिंदू शक्ति और हिंदुओं की खोई प्रतिष्ठा को दोबारा बहाल करने से जुड़े संदेशों, तथ्यों की जांच किए बगैर बड़ी संख्या में इनको शेयर किया जा रहा है, ऐसे तथ्यों को।
ये जानकारियां रिसर्च में सामने आई
और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि भारत में फेक न्यूज़ और मोदी के समर्थन वाली राजनीतिक गतिविधियां कई जगह एक जैसी हैं। ट्विटर पर मौजूद नेटवर्कों का जो डाटा एनालिसिस बीबीसी ने किया, उससे जानकारी मिली कि भारत में वामपंथी झुकाव वाले फेक न्यूज़ के स्रोत आपस में उस तरह नहीं जुड़े हुए हैं जिस तरह से दक्षिणपंथी झुकाव वाले फेक न्यूज़ के स्रोत के बीच में तालमेल है।
जी पवन, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन श्रोताओं को बता दें कि आज बीबीसी बियॉन्ड फेक न्यूज़ के तहत भारत के 7 शहरों में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस आयोजन को लेकर बीबीसी की भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा से बात की आदर्श राठौर ने।
आदर्श, बियॉन्ड फेक न्यूज़ इनिशिएटिव जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां हमने कोशिश की है कि पूरे देश से हर तरह के स्टेक होल्डर्स आपस में आए और ये जो बड़ी चुनौती है फेक न्यूज़ की, दुष्प्रचार की, उससे निपटने के तरीके भी खोजें, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है तो हम सब जानते ही हैं। पर हमारा इरादा ये है कि हम इस पूरी मुहिम के थ्रू, उसकी मदद से, इसके लिए कुछ एक हम ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढें जो कि हमारे हाथ में एक टूल जैसा हो। और ये स्टेक होल्डर्स में सभी शामिल हैं, इसमें पत्रकार हैं, इसमें सिविल सोसाइटी है, इसमें गैर सरकारी संस्थान हैं, इसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इसमें विचारक हैं, सब मिलकर के हम लोग इस पिछले कुछ महीनों से इस पर काम कर रहे हैं। और जैसा कि bbchindi.com पर भी हमारे श्रोताओं ने पढ़ा होगा और रेडियो पे भी सुना होगा कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग स्कूली बच्चों के साथ डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी पूरी मंशा ये थी कि ये जो नौजवान बच्चे हैं 14-15 साल के, जो नया नया व्हाट्सएप और फेसबुक पर आते हैं, वो रियल और फेक न्यूज़ के बीच में तफत कैसे करना सीखें। तो ये वर्कशॉप हमने किया है। हम लोग लगातार एक एडिटोरियल सीजन कर रहे हैं जिसमें कोशिश है ये जानने की कि आखिर इस फेक न्यूज़ को फैलाने के पीछे कौन लोग हैं। एक बड़ा सा रिसर्च है जिसकी चर्चा अभी आपने की, जिसके जो प्रमुख बिंदु है उस पर चर्चा हुई है कार्यक्रम में। तो उसमें कोशिश यही की गई है कि फेक न्यूज़ के पलने बढ़ने, फलने फूलने के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है और क्यों लोग, एक आम आदमी एक फेक न्यूज़ को, एक दुष्प्रचार को क्यों शेयर करता है अपने टाइमलाइन पर, इसके बावजूद कि उसे पता भी चल जाए कि ये गलत है, ये फेक है, ये रियल नहीं है। और साथ में आज यानी 12 नवंबर को दिल्ली समेत 6 और जगहों पर हम लोग एक पूरे दिन भर का कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें कि सभी लोग एक बार फिर से मिलकर के सामने आ रहे हैं और हम लोग कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो कि ये बताएगा कि आखिर इस फेक न्यूज के पीछे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है, लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है, मीडिया की इसमें क्या भूमिका है।
ये थी बीबीसी की भारतीय भाषाओं के संपादक रूपा झा। भूमिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा रिसर्च में भारत, कीनिया, नाइजीरिया
जी,
तीनों जगह जो रिजल्ट आए हैं क्या वो एक से ही है?
नहीं वात्सल्य जी, जो रिजल्ट हैं वो आप जब देखेंगे तो बहुत ही अंतर है। जैसे कि पीढ़ियों का फर्क जो है, एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। भारत में जो नई युवा पीढ़ी है वो भी फेक न्यूज़ को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या उसी तरह रिजिड होकर के उस चीज़ को आगे बढ़ाती है जिस तरीके से पुरानी पीढ़ी सोचती है। लेकिन कीनिया और नाइजीरिया में जो युवा वर्ग है वो अपने उम्र दराज लोगों की तुलना में थोड़ा सा लिबरल है और उसको ध्यान देता है फिर आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से इस रिसर्च में एक जो ज़रूरी बात आई है वो ये है कि शब्दों से ज़्यादा यानी टेक्स्ट मैसेज की तुलना में जो तस्वीरें हैं या जो मीम्स हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फेक न्यूज़ के थ्रू। इन तस्वीरों और मीम्स के थ्रू जो है वो फेक न्यूज़ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। और एक चीज़ और है इसमें कि कीनिया और नाइजीरिया में जो लोग हैं वो जब कोई फेक न्यूज़ आगे बढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि ये फेक न्यूज़ है या ये रियल न्यूज़ है। उन्हें लगता है अच्छा मेरे पास खबर आई तो मैं तुरंत आगे बढ़ा दूं ताकि जो उनकी कम्युनिटी है उसमें वो
उसमें लगे
कि हाँ देखो मैं कितना एक्टिव रहता हूँ या मेरी जानकारी कितनी है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोग कुछ ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं जो विश्वसनीय हैं तो उन्हें लगता है उस स्रोत से आई है तो ये खबर सच ही होगी।
जी हम आपको बता दें कि बीबीसी हिंदी आज लखनऊ में आयोजन कर रहा है, वहाँ क्या होगा मैंने ये सवाल किया लखनऊ में मौजूद अपनी साथी सर्वप्रिया सांगवान से।
लखनऊ में ये जो प्रोग्राम है 10:30 बजे शुरू हो जाएगा जिसका लाइव प्रसारण भी हमारे जो बीबीसी हिंदी न्यूज के जो फेसबुक है पेज है उस पर होता रहेगा। बीबीसी ने एक अपना रिसर्च किया है गूगल और ट्विटर के साथ मिलकर फेक न्यूज का क्या प्रभाव है भारत पर उसको लेकर पूरा रिसर्च है और ये हमारे जो हिंदी के जो एडिटर हैं मुकेश शर्मा वो इसे पेश करेंगे। हमने बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें आमंत्रित किया है जैसे कि राजनीति के लोग हैं, पत्रकारिता जगत के लोग हैं, प्रशासन से और जो साइबर एक्सपर्ट हैं, इस तरह के लोगों को हमने इसमें बुलाया है चर्चा के लिए। तो हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा वो भी शामिल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वो भी आएंगे, जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के ओपी सिंह वो भी अपना की नोट स्पीच देने आएंगे कि पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज को रोकने के लिए, इससे निपटने के लिए और इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है, अभी क्या क्या करना बाकी है उसको लेके वो अपना स्पीच देंगे।
जी सर, प्रिया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरे दिन का कार्यक्रम है किस तरह से, क्या कई सेशंस में ये कार्यक्रम होगा?
हमने कई भागों में बांटा है वात्सल्य। तो पहला जो प्रोग्राम है वो हमारे सभी जो राजनीति के जगत से जो लोग आए हैं उनको हमने बुलाया है, उनसे हम वन ऑन वन भी बात करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। हम बात करेंगे कि क्या जो फेक न्यूज का जो दीमक है क्या वो हमारे लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, उसके ऊपर एक सेशन होगा, एक दूसरा सेशन हमारा। उसके बाद एक बैंड परफॉर्मेंस भी है और उसके बाद हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा जिसमें सिर्फ पत्रकारिता से जुड़े लोग होंगे और साथ ही मीडिया समीक्षक भी होंगे ताकि वो पूरी तरह से एक पूरा बैलेंस्ड व्यू इसको निकल कर आए कि पत्रकार और पत्रकारिता किस तरीके से फेक हो रही है फेक न्यूज से निपटने में। उसके बाद हमारा एक वर्कशॉप है जो गूगल के रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि हैं गूगल के वो उसे सिखाएंगे, वहाँ के जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया होगा और वो बताएंगे कि गूगल जो टूल्स हैं कौन कौन से गूगल टूल्स हैं जिनसे फेक न्यूज को पकड़ा जा सकता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि क्या ये जो तस्वीर या जो वीडियो वो अपने फोन में या अपने व्हाट्सएप पर देख रहे हैं क्या ये सच है या ये सही नहीं है।
ये थी सर्वप्रिया सांगवान। अगर आप लखनऊ में हैं तो इस कार्यक्रम में जरूर शरीक हो। हम आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम का प्रसारण बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे होगा। आप बियॉन्ड द फेक न्यूज से जुड़ी खबरें bbchindi.com पर भी पढ़ सकते हैं। और अब एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे, उन्होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। हमारे साथ फोन लाइन पर बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं इमरान कुरैशी। जी इमरान साहब, बीजेपी के एक बड़े नेता, पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान।
बाकायदा बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि वो करीब वो ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब 85 में आए तो उसके बाद से 1996 से वो पहली बार लोकसभा में का एक चुनाव जीता और जब से अभी तक बेंगलुरु साउथ क्षेत्र को वो लोकसभा में रिप्रेजेंट करते आए हैं।
दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार में भी उनकी बड़ी भूमिका थी।
सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, वो पिछले इलेक्शन जो भी हुआ था मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी वो पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर थे कभी भी, और वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब के बहुत करीब माने जाते थे, और प्रमोद महाजन जो पूर्व मंत्री थे उनके करीब भी बहुत करीब थे वो। मगर वो उनकी एक खास खासियत ये थी कि वो मुश्किल परिस्थितियों को
मौका में बदल लिया करते थे। जी, बीमारी की खबरें तो लंबे टाइम से आ रही थी, अभी ये अचानक हुआ या ये
नहीं? उनको लंग कैंसर हुआ था पिछले मई के जो असेंबली कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त उनको एक खांसी शुरू हो गई थी, और उससे उसके बाद से वो लगातार मतलब लंदन या न्यूयॉर्क में के हॉस्पिटल में उनका इलाज किया गया, और उसके बाद उनको दो हफ्ते पहले बेंगलुरु के कैंसर हॉस्पिटल में लाया गया था, और जब से वो मतलब उनकी तबीयत खराब होते ही गई और उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, और उसकी वजह से कैंसर तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया था मगर उनको इन्फेक्शन ज्यादा हुए थे।
जी, बहुत शुक्रिया इमरान कुरैशी साहब इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की, जहां आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी बस्तर में हैं, उन्होंने वहां से कुछ आवाजें भेजी हैं, पहले वो सुनाते हैं।
तो सर, सुबह सुबह का वक्त है, कहां ड्यूटी कहां है आप?
मेरा यहीं सर, ये सामने चौकी है।
अच्छा अच्छा, और इलेक्शन की तैयारी में है?
बस सर।
तो कैसा लग रहा है, चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई?
पूरी है सर। अच्छा, सभी तैयार है?
सब तैयार है
जी।
लेकिन यहाँ के लिए तो एक बड़ी बात है, चुनाव होना बस्तर में।
हाँ सर, ये बात है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है, और इस बार तो और ज्यादा फोर्स आई है,
बहुत ज्यादा फोर्स है। जी। आप कहाँ, क्या वोट डालिएगा? नहीं लगता है कहीं जा रहे हैं आप?
हम आंध्रा वाले हैं।
तो 7 बजे से मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगी?
8 बजे से सर।
8 बजे से यहाँ शहरी इलाकों में? 8 बजे
सर।
और आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आंध्रा से?
नहीं, हम डोंगर से आए।
तो क्या वोट नहीं डालिएगा?
वोट डालने जाएंगे ना काम करके।
तो थोड़ा सा जोश है वोट में इस बार? ठंडा है?
जोश है
इस बार, टक्कर है या?
टक्कर है, टक्कर।
आपका नाम क्या है?
भरत।
और आपके साथ के और लोग कहाँ हैं? सब
काम में लगे हुए हैं अभी।
वो भी जाएंगे वोट डालने?
जाएंगे,
और मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक रहेगी फिर?
हाँ रहेगी।
अभी सुबह के 6:47 और 18 सेकंड हुए हैं, लगभग 1.25 घंटे के बाद वोटिंग शुरू होगी। सलमान साहब फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सलमान साहब, सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाके में मतदान है आज?
जी, ये पूरे के पूरे जो 18 विधानसभा की सीटें हैं, ये सारी की सारी नक्सल प्रभावित हैं, और इनमें खास तौर पर जो ये बस्तर का जो इलाका है ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाका है। कुल मतदान केंद्र हैं यहाँ पर बस्तर में ही अगर बात की जाए तो 4,336, जिसमें से 2,022 यानी कि लगभग आधा समझ लीजिए कि सीटें वो संवेदनशील हैं, और 190 उम्मीदवार हैं। लेकिन आपको एक मैं मजेदार चीज बताता हूँ इस चरण की, वो ये है कि कुल 30,80,000 मतदाता तो हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। 16,22,492 महिलाएं हैं यहाँ, और पुरुष जो है वो 15,57,000 हैं। लेकिन इसका जो रेशियो है उससे आप देखेंगे कैसे महिलाओं को पीछे छोड़ा जाता है, जबकि हर चीज में महिलाएं आगे हैं, कि यहाँ उम्मीदवार जो हैं वो 177 हैं पुरुष, जबकि सिर्फ 13 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं।
जी, मतदाताएं ज्यादा हैं महिलाएं, लेकिन चुनाव मैदान में ज्यादा पुरुष हैं। आपने मतदाताओं की संख्या तो बताई, लेकिन जो वहाँ माहौल है, वोटर कितने उत्साहित हैं?
देखिए, जंगल के इलाके में जो जितनी भी चुनावी एक्टिविटी जो नजर आ रही है, वो जो अर्बनाइज एरियाज हैं या कस्बे हैं, शहरी इलाके हैं, वहाँ तो झंडे भी हैं, रैलियां भी हो रही हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विपक्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। लेकिन जो जंगल के इलाके हैं, जो सुदूर इलाके हैं, वहां पर कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ है, माओवादियों ने बहिष्कार का आह्वान किया है, और आप 300 जो पिछले 10 दिन में 300 विस्फोटक IED जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस वो बरामद की गई है, 198 बूथों को रिलोकेट किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बीजापुर में इसकी संख्या है, और 13 लोग अभी तक जो है 15 दिनों में मारे जा चुके हैं, इस पूरे प्रकरण के दौरान जब ये कैंपेनिंग चल रहा था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो माहौल है वो कितना खतरनाक है।
जी सलमान साहब, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, 90 में से 18 सीटों पर वोटिंग, इसमें एक सीट मुख्यमंत्री की भी है।
सबसे बड़ी सीट जो है, सबसे ज्यादा नजर जिसकी जिस पर है वो मुख्यमंत्री की सीट है, जिस पर उनका मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी करुणा शुक्ला के साथ है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी फाइट जो है इस पूरे पहले चरण के मतदान में वो उसी सीट पर है, राजनांदगांव की।
जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब, शाम को दिन भर में दोबारा आपसे लेंगे अपडेट। और अब वक्त है अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालने का, भूमिका राय तैयार है अखबारों के साथ, क्या सुर्खियां हैं भूमिका आज?
जी वात्सल्य, अभी जैसा सलमान जी ने बताया कि आज 18 सीटों पर विधानसभा में छत्तीसगढ़ में है चुनाव, तो उसी से जुड़ी एक खबर है कि छत्तीसगढ़ में वोट पड़ने से महज 24 घंटे पहले लाल आतंक, ये हेडलाइन लगाई है NBT टाइम्स, नवभारत टाइम्स ने, और कांकेर में 6 ब्लास्ट हुए हैं। तो और ऐसा है कि 15 दिनों में ये तीसरा अटैक है नक्सली प्रभावित इलाके में, लेकिन आपने जैसा अभी हमारी रिपोर्ट में सुनाया कि लोगों के इरादे मजबूत हैं और वो वोट डालने जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक खुश करने वाली खबर ये है कि कल 2 क्रिकेट मैच हुए, एक में महिलाओं ने पाकिस्तान टीम को हराया और पुरुषों के क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ को हराया है, और दोनों ही खुशखबरी है हमारे लिए। और इस तरीके से पुरुष श्रृंखला जो थी, जो T20 मैच की जो थी, उसमें हमारी सीरीज जीत गई है।
बहुत शुक्रिया भूमिका राय, मैं आपको रोकूंगा, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, और इस समय श्रोताओं को सुनाने का वक्त आ चुका है वसुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी।
मुझे आज तक समझ में ना आया कि जितने भी धर्म आधारित सियासी गुट और संस्थाएं हैं, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन होने के बावजूद एक ही विचारधारा के चश्मे से पानी पीने में कोई आपत्ति क्यों नहीं। मसलन लिबरल और सेकुलर सोच हिंदू उग्रवादियों के नज़दीक भी देशद्रोह के बराबर है, और मुसलमान अतिवादी भी उन्हें गद्दार और धर्म दुश्मन समझ के नफरत करते हैं। सेकुलर तालीम हिंदू और मुसलमान उग्रवादी बड़े शौक से हासिल करते हैं, एक से एक नया गैजेट, गाड़ी, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में उन्हें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं। कोई उग्रवादी मोबाइल फ़ोन का नया मॉडल कभी रद्द नहीं करेगा, मगर नई सोच को अपनाना छोड़ उसे सुनने से भी इनकार करके उल्टा आपके मुंह पे हाथ रख देगा। पश्चिम में रेनेसां पीरियड में जहां और चीज़ें आईं, वहीं साइंसी सोच और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियां भी तेज़ी से खुलनी शुरू हुईं। रफ्ता रफ्ता यूनिवर्सिटियां ऐसी जगह कहलाने लगी जहां नई सोच की कौंपलें फूटती हैं। कोई भी विद्यार्थी या गुरु किसी भी विषय पर कोई भी सवाल उठा सकता है, और जवाब चांटे, थप्पड़ या गाली से नहीं बल्कि दलील से देना पड़ता है। मगर दुनिया लगता है कि उसी ज़माने की ओर धकेली जा रही है जिससे जान बचा के भागी थी। फैशिज्म राजनीति को लपेट में लेने के बाद अब यूनिवर्सिटियों से भी ऑक्सीजन ख़त्म कर रहा है। रफ्ता रफ्ता यूनिवर्सिटियों को भी धार्मिक मदरसों में ढालने की कोशिश हो रही है, और सवाल पूछना जुर्म बन रहा है। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि किस तरह एक सेकुलर नेता खान अब्दुल वली खान के नाम पे बनी यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष एक छात्र मिशाल खान को उन्हीं के साथी लड़कों ने तौहीन रिसालत का झूठा इल्ज़ाम लगा के मार डाला। उनके कत्ल के जुर्म में सिर्फ 5 लोग इस वक्त जेल में हैं, बाकी छूट गए। डॉक्टर मुबारक अली पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार हैं, मगर यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाने का काम देते हुए डरती हैं। डॉक्टर परवेज़ हुदबाई को धार्मिक गुट शक की नज़र से देखते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले ज़्यादातर प्रोफेसर ना सवाल करने की इजाज़त देते हैं, ना हर सवाल का जवाब खुल के समझाते हैं। जो भी कोर्स है उसे बड़े तोते छोटे तोतों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब सीमा पार से ये खबर आती है कि प्रोफेसर रामचंद गोहा जैसे जाने माने इतिहासकार ने धमकियां मिलने पे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से इनकार कर दिया है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेड क्लासों में से प्रोफेसर कांजा इलिहा की पुस्तकें हटा दी गई हैं, या किसी यूनिवर्सिटी में अब कोई सेमिनार या वर्कशॉप ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे सरकार की नाराज़गी का ख़तरा हो, तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। ये सोच सोच के कि हम अकेले नहीं हैं, पड़ोसी दुश्मन ही सही पर उसकी दुसराहट इतनी बुरी भी नहीं।
वो साहब की डायरी पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। और अब खेल का साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
वेस्ट इंडीज में जारी आईसीसी महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट में कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मिताली राज के 56 और स्मृति मंधाना के 26 रन की मदद से पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के सामने जीत के लिए 134 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पाकिस्तानी महिला टीम ने बिस्बा मारूफ के 53 और निदा डार के 52 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 133 रन बनाए। लगातार 2 जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय महिला टीम गुरुवार को आयरलैंड का सामना करेगी। आखिरकार वेस्ट इंडीज का भारत दौरा कल चेन्नई में खेले गए तीसरे और आखिरी 2020 मुकाबले के साथ समाप्त हुआ, जिसे भारत ने 6 विकेट से अपने नाम किया। भारत के सामने जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य था, जो उसने अभी तक अपनी फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के 92 और ऋषभ पंत के 58 रन की मदद से 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि जीत के लिए आखिरी रन मैच की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे ने बनाया, जो 4 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की जीत के सूत्रधार रहे शिखर धवन और ऋषभ पंत ने तीसरे विकेट के लिए 130 रन जोड़कर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को तब बैकफुट पर ला दिया, जब 45 रन पर 2 विकेट झटक कर वो फ्रंट फुट पर नजर आ रहे थे। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के नाबाद 53 और डेरेन ब्रावो के नाबाद 43 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 181 रन बनाए। मैच समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय 2020 मुकाबले में अपने पहले अर्धशतक से राहत की सांस ली ऋषभ पंत ने।
After a long time I got run in T20 cricket for India, especially in a condition like there where was a situation I have to put in effort to score run, it was a good thing for me.
और धवन ने भी अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट में अपना सर्वाधिक स्कोर बनाकर शिखर छुआ और अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब बल्ले से दिया।
Yeah, it is big score. I'm very happy that I scored 92 and it's fine that 5-6 inning goes, so I don't, it doesn't matter to me what people say. Yeah, I just back myself and back my game.
और अब समीक्षा। अगले साल होने वाले आईसीसी विश्व कप को लेकर भारत के कप्तान विराट कोहली की मांग, तेज गेंदबाज ना खेलें आईपीएल, कितनी जायज?
आपके पास 7-8 ऐसे बॉलर हैं जो दावा रखते हैं टीम में आने के लिए, हर कोई तो आ नहीं सकेगा, उसमें से 3 या 4 आएंगे। प्लेयर अच्छे फॉर्म में है तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा खेले, क्योंकि अगर आप अच्छे फॉर्म में बॉलर को हटा दें, उसका लय जो है वो खो जाए, तो फिर वो प्लेयर के लिए भी अच्छा नहीं और टीम के लिए भी अच्छा नहीं है।
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। दरअसल पिछले दिनों भारत के कप्तान विराट कोहली और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई प्रशासकों की समिति की बैठक के बाद ये विचार सामने आया कि अगले साल होने वाले विश्व कप में तेज गेंदबाज तरोताजा होकर खेलें और इसके लिए आईपीएल न खेलें। अब भला जिस आईपीएल के दम पर खिलाड़ी भारतीय टीम में आते हों और मालामाल भी होते हों, वो आईपीएल से दूर कैसे रहें? सवाल कई, जवाब एक। आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स के मीडिया मैनेजर रह चुके खेल समीक्षक जी राजा रमन का।
ये मान के चलिए उमेश यादव हो या जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, ऐसे तेज गेंदबाज को आराम देना कोई भी फ्रेंचाइज नहीं चाहेगा, क्योंकि वो टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। आप देखिए, जसप्रीत बुमराह के बगैर मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक आधा हो जाएगा।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। बीबीसी आज बियॉन्ड फेक न्यूज नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। इसकी शुरुआत एक रिसर्च के नतीजों को जारी करने से होगी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन हो गया है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री ने अपने निवास स्थान बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संसद भंग करने के अपने विवादास्पद बयान का बचाव किया है, जिसके विरोध में देश में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि अंध राष्ट्रवाद से प्रेरित विचार दोबारा जड़े जमा रहे हैं। गजा में इसराइली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच संघर्ष की खबर है। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष में कम 6 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।